मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 15 अप्रैल 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं जय कृष्ण कामत, आपका गांव है महेश, जिला मधुबनी बिहार। रवि अहिरवार, आपका गांव है भगवानपुरा, जिला गुना मध्य प्रदेश। ऋषभ राठौर दिल्ली से। निधि वर्मा लखीमपुर उत्तर प्रदेश। गिरीश जोशी उदयपुर राजस्थान। और दिनेश कुमार, आपका गांव है सिसवा कला, जिला सिवान बिहार। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने जा रहा हूं, बशर्ते कि आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हों। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, पहले थोड़ी सी दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं, न्यूज को देख लेते हैं। इनफैक्ट सच ये है कि कोई न्यूज है भी नहीं, लेकिन आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटोरियल कमेंट है लेटरल एंट्री को लेकर। लेटरल एंट्री के बारे में मैं जरूर आप सबसे कुछ बातें करना चाहूंगा क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे सिविल सर्विसेज से है। देखिए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये लेटरल एंट्री क्या है। हिंदी में इसे कहते हैं पार्श्व भर्ती। एंट्री का मतलब है रिक्रूटमेंट, आप कह लीजिए भर्ती, लेकिन उस तरह का रिक्रूटमेंट भी नहीं है, इसीलिए इसको बेसिकली हम रिक्रूटमेंट नहीं कहते हैं, इसको एंट्री कहते हैं, यानी कि प्रवेश, पार्श्व प्रवेश। पार्श्व का मतलब होता है बगल से, यानी कि बगल से प्रवेश करना, यानी कि मुख्य द्वार से आप प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आप बगल से प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर आप इसको सिविल सर्विस पर अप्लाई करें तो देखिए आप जिस आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये मुख्य द्वार से आप सर्विस में प्रवेश करने जा रहे हैं, मुख्य द्वार से आप प्रवेश कर रहे हैं। स्टेट सिविल सर्विस में आप एग्जाम देकर के आते हैं तो आप मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। तो ये पार्श्व द्वार क्या है? ये पार्श्व द्वार वह है कि जो मुख्य द्वार से तो नहीं आ रहे हैं लेकिन दूसरे रास्ते से सिविल सर्विस में आ रहे हैं, तो यही है लेटरल एंट्री। अभी आप लोगों ने न्यूज भी पढ़ी होगी कि सरकार ने 9 ज्वाइंट सेक्रेटरीज अपॉइंट किए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरीज, याद रखिए कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव एक तरह से हेड का पद होता है। एग्जीक्यूटिव हेड इस मायने में टॉप पर तो देखिए सेक्रेटरी होते हैं, इसके बाद फिर एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं और फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी इस मायने में हेड होते हैं कि उनको जो विभाग दिया जाता है, डिपार्टमेंट दिया जाता है, वो उसके हेड होते हैं और सच मायने में सच पूछे तो मिनिस्ट्री को वही चलाते हैं। अब सेक्रेटरीज के अंडर में तो कई सारे ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, वो दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी काम तो सेक्रेटरी के अंडर में ही करते हैं लेकिन काफी कुछ स्वतंत्रता के साथ करते हैं। यानी कि केंद्र सरकार में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद है वो बहुत महत्वपूर्ण पद है, आप यूं कह लीजिए कि शायद सबसे महत्वपूर्ण पद है। और इस सबसे महत्वपूर्ण पद पर केंद्र सरकार बाहर से टैलेंट लेकर आ रही है। और यहां एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी है, जब आप एनालिसिस करेंगे कि इनका जो रिक्रूटमेंट है, याद रखिए सरकार नहीं कर रही है, सरकार ने भर्ती करने का काम यूपीएससी को सौंपा है। जैसे कि आप को भर्ती करने का काम यूपीएससी कर रही है कि यूपीएससी को उसने जिम्मेदारी दी है कि हमें आप इन इन मिनिस्ट्रीज के लिए, खासकर उन मिनिस्ट्रीज के लिए जहां पर स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए ऑफिसर्स दीजिए। ये जो लेटरल एंट्री से जो लोग आ रहे हैं इनके बारे में एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी है, तभी आप सही समीक्षा कर पाएंगे कि ये बहुत हाईएस्ट लेवल पर आ रहे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, इसका मतलब है कि अगर आप सीधे आईएएस में आते हैं, राइट, कनिष्क जो कटारिया है अभी आईएएस में आए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए इनको 18 साल लगेंगे अगर आप डायरेक्ट आईएएस में आते हैं तो, ठीक है। तो मतलब काफी हाईएस्ट लेवल का ये पद है। ये आ तो रहे हैं लेटरल एंट्री से लेकिन ये मेन स्ट्रीम के पार्ट नहीं होंगे। मेन स्ट्रीम के पार्ट नहीं होंगे का इसका मतलब है नहीं कि इनके अधिकार कम होंगे, नहीं, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर आएंगे काम करेंगे, पार्ट नहीं होंगे कहने का मतलब है कि ये 5 साल के बाद फिर वापस चले जाएंगे। अब सरकार किसी आप कह लीजिए कि समझौते के तहत उनका समय 1-2 साल के लिए बढ़ा दे तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको इसमें इनका विलय कर लिया जाएगा और फिर ये सिविल सर्विस के परमानेंट पार्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। पांच साल तक की सर्विस करेंगे और इसके बाद फिर जहां से आए थे वहां लौट जाएंगे। हो सकता है कि सरकार फिर से रिक्रूट करने के लिए फिर से एडवर्टीजमेंट निकाले और फिर से ये लोग अप्लाई करें और इस आधार पर इनको फिर से भर्ती कर लिया जाए कि भी इनके पास सरकारी काम करने का अनुभव है, वो बात अलग है। जब आप एक बार आईएएस में आ जाते हैं तो आप अगर बीच में रिजाइन नहीं करते हैं तो अंत तक बने रहते हैं, या कोई और घटना नहीं घटती है तो आप 60 साल की उम्र तक बने रहते हैं। लेकिन ये जो लेटरल एंट्री से आएंगे इनके साथ ऐसा नहीं होगा। ये मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए हैं ताकि समीक्षा करने में आप गड़बड़ी न करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को लेकर के जो प्रश्न बनता है सिविल सर्विस में वह है कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, यानी कि जो सामान्यज्ञ हैं, आईएएस को जर्नलिस्ट कहा जाता है, मतलब वो किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं है, सभी विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है, और ये जो लोग आ रहे हैं ये लोग विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो ये सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ की लगातार एक लड़ाई चलती रहती है, इन दोनों के बीच में लगातार एक विवाद चलता रहता है। तो इससे यह टॉपिक बनता है और मैं चाहूंगा कि अभी जो मेंस एग्जाम हो रहे हैं इसके लिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर दें। मित्रों, आइए अब हम आज के मुख्य विषय पर बात करते हैं, हिंदी माध्यम का सच। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी माध्यम ही नहीं, जब मैं हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूं तो इसमें आप दूसरे सारे रीजनल लैंग्वेजेस को ले लें जिनके लिए यूपीएससी ओपन है। इन सब माध्यमों से जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो सफलता मिल रही है, उसका प्रतिशत काफी कम हो गया है। यह एक सच्चाई है और हमें यह सच्चाई स्वीकार करनी ही चाहिए। लेकिन मित्रों, मुझे लगता है कि सच्चाई को स्वीकार करने के साथ साथ हमें यथार्थ तरीके से भी सोचना होगा। देखिए, अगर हम प्रतिक्रिया करेंगे एकदम से जोश में आकर के, निराशा से भरकर, साफ साफ अगर ये तोहमत लगा देते हैं यूपीएससी पर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कि यूपीएससी भेदभाव करती है, वो अंग्रेजी वालों को ही ज्यादा रिक्रूट कर रही है, हिंदी वालों के लिए उसने या दूसरे रीजनल लैंग्वेज के लिए उसने रास्ता बंद कर रखा है, तो मुझे लगता है कि शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत सही नहीं होगा। इसीलिए देखिए, आप जब से रिजल्ट आया है तब से मैं लगातार इस पर थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि शाम को रिजल्ट निकलता है और रात में व्हाट्सएप पर मेरे पास कई खबरें आ जाती हैं कि सर इस बार हिंदी वालों का बहुत कम सिलेक्शन हुआ है, शाम को रिजल्ट आया है। कैसे रात तक आपने कैलकुलेट कर लिया कि हिंदी वालों का बहुत कम सिलेक्शन हुआ है? और अभी भी अगर आप कहें कि हिंदी वालों का भी आ रहे हैं कि 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ, केवल 1% सिलेक्शन हुआ है, 2% सिलेक्शन हुआ है। मेरे पास इस तरह की खूब खबरें आ रही हैं कि सर जो हिंदी में जो टॉप जिसने किया है उसकी जो रैंकिंग है 350 के आसपास है, इस तरह की बातें खूब आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो अपना एड निकाला है, उस एड में उन्होंने बहुत साफ तौर पर लिखा है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने इंटरव्यू में हिंदी मीडियम लिया था उसका 87th रैंक है, और उसने और भी अपने इंस्टीट्यूट से निकले हुए स्टूडेंट के नाम निकाले हैं, लगभग उसमें 6-7 या 8 स्टूडेंट्स के नाम है, लेकिन उसमें जो हिंदी मीडियम जो इंटरव्यू के लिए जो रैंकिंग दे रहे हैं वो 87th दे रहे हैं, और अफवाह फैल रही कि पहला जो हाईएस्ट है वो 350वें नंबर पर है। तो मित्रों, इस तरह की अफवाहें, खासकर चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो बहुत फैल रही है। देखिए, बावजूद इसके कि मैं ये बात कह रहा हूं कि यस, हिंदी और दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत डाउन हो गया है, यह एक सच है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक मेल आया और बड़े उत्तेजना से भरा हुआ मेल था कि सर आप ये बताइए, उनको ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेजी वालों का फेवर कर रहा हूं। दोस्तों, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, न मैं किसी का फेवर कर रहा हूं, न मैं किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूं। मैं केवल एक संतुलित मस्तिष्क के साथ, अगर यह एक समस्या है तो मैं उस समस्या पर विचार करना चाह रहा हूं और आप लोगों की भी राय लेना चाह रहा हूं, और इसीलिए मैंने आप लोगों से भी कुछ सवाल पूछे हैं ताकि हम एक विचार पूर्वक अपनी कमजोरियों को समझ सकें कि भाई हिंदी और दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस के स्टूडेंट क्यों नहीं आ पा रहे हैं। हम अपनी कमजोरियों को समझें, उन्हें पकड़ें और उन पर काम करना शुरू करें, रिजल्ट तभी मिलेंगे। और अगर हम केवल अफवाहों के दौर पर या आक्रोश में आकर के कुछ भी कह दें तो उससे ठीक है, हमारे अंदर का जो एक गुस्सा है वो थोड़ा शांत जरूर हो जाएगा, लेकिन अगले साल या आगे आने वाले 10 सालों तक इससे परिणाम कुछ नहीं मिलने हैं। आक्रोश किस किस तरीके से अभिव्यक्त हो रहा है? मेरे पास एक मेल आया और उन्होंने कहा कि सर ठीक है, चलिए आप हिंदी वालों की बात करते हैं, अंग्रेजी वालों की बात करते हैं, आप मुझे यह बताइए कि अगर, देखिए, अगर स्टील प्लांट लगाए गए का हिंदी में ट्रांसलेशन स्टील के पौधे लगाए गए किया जाएगा तो हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे? यानी कि उसका यह कहना था कि अंग्रेजी में होगा कोई स्टील प्लांट लगाए गए, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन था स्टील के पौधे लगाए गए। स्टील प्लांट का मतलब है कि संयंत्र लगाया गया, स्टील बनाने का कोई कारखाना लगाया गया होगा। उसका कहना है कि इस तरह का ट्रांसलेशन होगा तो कैसा होगा। तो मैं उन स्टूडेंट्स से केवल एक बात पूछना चाहता हूं पूरी विनम्रता के साथ कि आपको यह जो उदाहरण मिला ये किस साल के पेपर में मिला, प्लीज मुझे बताएं कि किस साल के पेपर में जो ट्रांसलेशन है वो इतना बुरा हुआ। उदाहरण के साथ आप बात करेंगे, जब तथ्यों के साथ बात करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। आप मुझे बताइए, मुझे, क्योंकि मैं पिछले इतने सालों के साल से पेपर से जुड़ा हुआ हूं सिविल सर्विस के, मुझे इस तरह की घटना याद नहीं आ रही है कि पेपर में आया हो। लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं कि 1979-80 के आसपास हम लोगों ने इस तरह की बात जरूर सुनी थी उड़ती उड़ती कि हमारे जो स्टील मिनिस्टर थे वो कहीं किसी कारखाने का स्टील प्लांट का उद्घाटन करने गए हुए थे, तो हिंदी न्यूज में इस तरह की बातें शायद आई थी कि उन्होंने स्टील के पौधों का उद्घाटन किया। उस समय की बात बता रहा हूं, 79-80 की बात बता रहा हूं, लेकिन आईएएस की परीक्षा में इस तरह का ट्रांसलेशन हुआ हो मुझे याद नहीं है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि हम इस तरह की बातों पर विचार करें। चूंकि वक्त हो चुका है, मैं अब आगे इस पर बात करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन एक खबर मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा। पिछले साल मैंने YouTube पर एक प्रोग्राम डाला हुआ है, और देखिए यह हर साल ही हो रहा है, यह नई बात नहीं है, जिसका शीर्षक है उस YouTube प्रोग्राम का, यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए हिंदी माध्यम वाले क्या करें। यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए हिंदी माध्यम वाले क्या करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सब जो इसको लेकर के चिंतित हैं और जो आगे अपनी तैयारी को जारी रखना चाहते हैं, एक बार उस यूट्यूब के प्रोग्राम को देखें, एक बार नहीं बल्कि कई कई बार देखें। अगर आपको मेरी बातें ठीक लग रही हैं तो उन्हें नोट भी करें, उन पर काम करना शुरू करें, और अगर आपको किसी मेरी बात से इत्तफाक नहीं है तो आप मुझे लिखकर सूचित करें, मैं उस पर विचार करूंगा। और मैं चाहता हूं कि चूंकि यह एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के हिंदी माध्यम और दूसरे रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट बहुत ज्यादा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो हमें चाहिए कि इस पर हम बहुत ही तथ्यपूर्वक विचार करके अपने लिए एक मॉडल तैयार करें, एक रास्ता बनाने की कोशिश करें जिस पर हम आगे चलकर सफलता हासिल कर सकें। तो दोस्तों, इस पर आप सबके विचार आमंत्रित हैं। आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको उपलब्ध करा रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रूपेश, राकेश कुमार गौर, अलका चंदर, अविनाश कुमार, रवि कुमार और किरण गुप्ता, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।